हरे कृष्ण। कोई अच्छा कर्तव्य मिल जाता है उसको। करताल प्रभु करताल। हरे कृष्ण। श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी भगवान की। हरे कृष्ण। तो अभी हम छोटा कीर्तन करेंगे, तत्पश्चात प्रवचन शुरू होगा। तो जो भी इस प्रवचन में बैठना चाहते हैं यहाँ पे बैठ सकते हैं। प्रभु जी लोग अगर हो सके तो और आगे आइए, ताकि और कोई बैठना चाहे बैठ सकते हैं। जो लोग दर्शन लेने वाले हैं वो यहाँ से पीछे से दर्शन लेकर बाहर की तरफ प्रस्थान कर सकते हैं। हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदनंदन ब्रज जनरंजन यशोदनंदन ब्रज जनरंजन यशोदनंदन ब्रज जनरंजन यशोदनंदन जमुना तीरावन चारी जमुना तीरावन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव यशोदनंदन ब्रज जनरंजन यशोदनंदन ब्रज जनरंजन जमुना तीरावन चारी जमुना तीरावन चारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री हरि नाम संकीर्तन की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाखया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधार शिवासदि गौर भक्त बृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो उपस्थित सभी अतिथियों का और भक्तों का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। तो आज का बड़ा विशेष दिन है हमारे लिए, सभी को नए साल की शुभकामनाएं। तो बहुत बहुत आपको 2023 की भारी शुभकामनाएं, और हम प्रार्थना करते हैं कि ये वर्ष आपके लिए बहुत ही आनंदमय हो, भक्तिमय हो, और भगवान की असीम कृपा रहे इस वर्ष में। तो जैसे कि ये नया वर्ष है, तो हर बार जब नया वर्ष होता है तो हम सोचते हैं कि इस वर्ष में क्या करना चाहिए। जैसे बहुत बार अंग्रेजी में कहते हैं न्यू ईयर रेजोल्यूशन, मतलब नए साल में हम क्या चीज करना चाहें अपने जीवन को सुधारने के लिए, अपने जीवन को बढ़ाने के लिए। कितने लोगों ने नए साल के लिए कुछ रेजोल्यूशन लिया है? कितने लोगों ने नए साल के लिए कुछ प्रतिज्ञा ली कि भाई ये करूंगा? कितने लोगों ने सोचा कि कम से कम 5 किलो तो कम करूंगा? कोई है? कितने लोगों ने सोचा कि कम से कम 8 माला तो और बढ़ाऊंगा? या चार माला, कितने लोग माला शुरू नहीं करते यहां पर, कितने लोग माला नहीं करते? सब लोग करते, अगर जो नहीं करते वो आज से शुरू कर सकते हैं। तो इस प्रकार से लोग अलग अलग प्रतिज्ञा लेते हैं, अलग अलग रेजोल्यूशन लगते हैं कि मैं सुबह जल्दी उठने का प्रयास करूंगा, मैं रात को जल्दी सोऊंगा, प्रतिदिन 30 मिनट तो एक्सरसाइज करूंगा, भगवद गीता पढ़ूंगा दिन में आधा घंटा। तो इस प्रकार से हम कुछ ना कुछ सोचते हैं, कुछ ना कुछ प्रतिज्ञा लेते हैं, लेकिन प्रतिज्ञा लेने के बाद कितने लोग का 10 दिन के बाद प्रतिज्ञा छूट जाता है? हाँ, कितने लोग सोचते बस कल से चालू, और फिर कल उठने के बाद कल से नहीं परसों से चालू, ऐसा होता है ना। तो बहुत बार प्रतिज्ञा लेना आसान है, या किसी चीज को बोलना कि चलो कल से हम करेंगे, वो करना आसान है, लेकिन उसको दिन प्रतिदिन, महीने प्रति महीने और साल प्रति साल करने के लिए आपको उसके पीछे का सिद्धांत समझना चाहिए, उसके पीछे की फिलॉसफी समझनी जरूरी है। तो जब तक आप किसी का मार्गदर्शन नहीं लोगे, जब तक आप किसी से सुनोगे नहीं, जब तक आप वही चीज को श्रवण नहीं करोगे, तब तक वो चीज में निपुणता पाना या वो चीज में सक्सेस पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे लोग क्लासेस में जाते हैं, ट्यूशन टीचर के पास जाते हैं, क्योंकि ट्यूशन टीचर रोज आके पूछती है पढ़ाई किया क्या, होमवर्क किया क्या। तो रोज रोज वही सुनने से, वही चीज करने से और एक मार्गदर्शन से हम पढ़ाई में अच्छे नंबर लेके आते हैं। उसी प्रकार से हमको भी हमारे जीवन में आगे बढ़ना है तो हमको भी किसी से प्रेरणा लेनी चाहिए। और जैसे हमारे जीवन में कुछ प्रेरणा के लिए, कुछ ज्ञान के लिए, ज्ञान के अभिशाप, अगर ज्ञान चाहिए तो सबसे बड़ा ज्ञान जो भगवान कृष्ण ने जो दिया है वो है भगवद गीता का ज्ञान है। और पिछले महीने हमने भगवान कृष्ण की गीता जयंती मनाई थी, यानी कि जिस दिन भगवान कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया था। तो आज हम गीता के आधार पर ऐसे क्या सुवर्ण हमारे जीवन में, ऐसे क्या सुवर्ण पॉइंट्स है, या ऐसे क्या जीवन में चीजें हैं जो अगर हम लोग समझ सके तो हमारा जीवन आगे बढ़ सकता है। तो आज का टॉपिक है 4G। आप में से कितने लोगों ने शब्द सुना है पहले? आप में से कितने लोग के पास स्मार्टफोन है? कितने लोग के पास 4G फोन है? अभी तो 5G भी आने वाला, आ गया, आने वाला है कि आ गया? आ गया। तो कितने लोग को मालूम है 4G का मतलब क्या होता है? हाथ उठाइए, उत्तर दीजिए, बीच में मत बोलिए। यस प्रभु जी, फोर्थ जनरेशन, आप इंजीनियर हैं, फोर्थ जनरेशन। अभी 5G आएगा, वो है फिफ्थ जनरेशन, एक प्रकार का हाई स्पीड इंटरनेट ब्रॉडबैंड है और मोबाइल टेक्नोलॉजी है। तो आज हम लेक्चर के बाद फ्री में सिम कार्ड नहीं बांटने वाले, नहीं तो आप समझोगे कि प्रभु जी आपने 4G के बारे में बोला था, कुछ सिम कार्ड विम कार्ड दीजिए। वैसे भी यहाँ पे वाड़ा में नेटवर्क आता नहीं है, कितने लोग का नेटवर्क है ही नहीं इधर। तो ये 4G बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है आजकल कनेक्शन में। पहले तो लोग को इंटरनेट मिलना मुश्किल था, इंटरनेट वही था जो घर पे ब्रॉडबैंड आता था, लेकिन ये टेक्नोलॉजी की वजह से कहीं पे भी, गाड़ी में, ट्रेन में, कहीं पे भी नेटवर्क हो तो अच्छा कनेक्शन होता है। तो आज का और एक टॉपिक है, इंटरनेट से याद आया मुझको, जियो। ये रिलायंस वाला जियो नहीं है, ये लाइफ वाला जियो है। तो आज का टॉपिक है जियो थ्रू द भगवद गीता, गीता की राह पर कैसे चलना है और गीता के संदेश को कैसे अपने जीवन में पालन करना है, उसके आधारित पर हम बोलने का प्रयास करेंगे। तो ये है आज का टॉपिक। तो यहां पर हम देख रहे हैं इतने सारे सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि नेटवर्क प्रोवाइडर है पूरे विश्व में। जैसे देखो कौन से कंपनी है। आप में से कितने लोगों ने ऑरेंज का नाम देखा है? पहले आता था ना, कितने लोगों के पास ऑरेंज का सिम कार्ड था पहले? उसका एडवर्टाइजमेंट आता था, एक छोटा लड़का जाता था, उसके पीछे कुत्ता जाता था, उसका टैगलाइन था, वेयर एवर यू गो द नेटवर्क फॉलोज। फिर बाद में ऑरेंज ही किधर गायब हो गया, लोग ढूंढने लग गए. फिर बाद में वोडाफोन आया. फिर बाद में लोग वोडाफोन को ढूंढते रह गए कि नेटवर्क किधर है. तो इस प्रकार से अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो आपसे पैसा लेती है कि हम आपको बेस्ट कनेक्शन देंगे, बेस्ट इंटरनेट देंगे, सब कुछ बेस्ट देंगे, लेकिन समय पे कभी कभी कट हो जाता है. लेकिन जब हम भगवान की बात करते हैं, भगवान कण कण में है, हर क्षण है, हमारे हृदय में है, और वो हर क्षण हमको मदद करने के लिए बैठे हैं. तो वही भगवान कृष्ण जो है वो सर्वव्यापी के रूप में प्रकट है, और वही भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर भगवान के रूप में विराजमान है, अर्च विग्रह के रूप में, और वही भगवान कृष्ण गीता के रूप में विराजमान है. तो साक्षात गीता के रूप में या भागवतम के रूप में आते हैं, तो वो एक बुक इनकारनेशन को हम कहते हैं. तो यहाँ पर भले हम कितना पैसा दें, भले हम कितना आश्वासन ले, लेकिन इसका कुछ गारंटी है नहीं. लेकिन जब भगवान कुछ आश्वासन देते हैं तो उसका 100% गारंटी है. जैसे भगवान गीता में कहते हैं, योग क्षेमम वहाम्य हम. भले कोई व्यक्ति कुछ भी करे, उस व्यक्ति अगर वो मेरा नाम चिंतन करता है, मेरा स्मरण करता है, मेरी अनन्य भक्ति करता है, अनन्या चिंतयंतो माम ये जनाः परिउपासते हैं तेषां नित्याभियुक्तानां योग क्षेमम वहाम्य हम. उस व्यक्ति को जो भी चाहिए मैं प्रदान करूंगा, भगवान गारंटी देते हैं. और ये जो टाइटल है योगक्षेमम वहाम्यहम, ये किसने ले लिया है? LIC ने. LIC का टैगलाइन है योगक्षेमम वहाम्यहम. तो यहां पर हम देखते हैं कि भले हमको कितना भी आश्वासन दिया जाए, लेकिन सबसे बड़ा आश्वासन भगवान का है. इसका ज्वलंत उदाहरण है द्रौपदी जी का. द्रौपदी का भरी सभा में अपमान किया गया. हाँ, बड़े बड़े रति महारथी लोग बैठे थे, उनके खुद के पति वहां पर बैठे थे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया. और उस समय उन्होंने पूरी निस्सहाय भावना से भगवान को हाथ उठाकर बोला. क्या बोला? सब बोलिए, हे कृष्ण हे गोविंद, हे कृष्ण हे गोविंद. तो जब इतने निस्सहाय भावना से उन्होंने भगवान को पुकारा, तो क्या हुआ? भगवान ने साड़ी के रूप में उसको बचा लिया. पहले तो द्रौपदी ने प्रयास किया कि अपने अपने बल से उसने अपने आप को बचाना चाहा, लेकिन उसको पता चला, अरे वो दुशासन है, 10,000 हाथियों का बल है. फिर उसने सोचा, अभी तो कोई बचा नहीं सकता. तो इसीलिए जब जीवन में कठिन परिस्थिति आती है, तब केवल भगवान ही हमारे तारणहार होते हैं. इसके लिए ये बहुत ही विशेष चीज है. इसके लिए आज का हमारा टॉपिक है 4G. 4G का फुल फॉर्म यहाँ पर है गोल्डन ग्लिम्सेस ऑफ गीता ज्ञान. तो वास्तविक में गीता हमको क्या सिखा रही है और गीता से हमको क्या सीख लेनी चाहिए, ये आज हम चर्चा करेंगे. क्योंकि बहुत सारे लोग गीता पढ़ते हैं, ये पिछले महीने में बहुत गीता बांटी है हमने, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि हम गीता को समझ नहीं पाते और गीता वास्तविक में हमारे जीवन में क्या संदेश देना चाहती है वो हम भूल जाते हैं. तो इसके लिए गीता का टेक होम मैसेज क्या है, सरल भाषा में आज बताने का प्रयास करेंगे. तो आज का सार है गीता सार. ठीक है, तो जैसे कि सबको पता है, गीता एक यूजर मैनुअल के समान है. जिस प्रकार से कोई भी TV, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कुछ भी हम खरीदते हैं, तो उसके साथ एक छोटी पुस्तिका आती है जिसमें लिखा रहता है किस प्रकार से उसे चलाना है, किस प्रकार से उसको यूज करना है. जैसे आप लोगों ने मोबाइल लिया, किसी के पास आईफोन है यहां पर? 14 आईफोन किसी के पास है? आईफोन. तो सोचिए, आप नया आईफोन लेते हैं और नया आईफोन लेने की खुशी में अपने दोस्त से बात करते हैं. एक घंटा बात करने के बाद फोन थोड़ा गर्म हो जाता है, होता है कि नहीं? ज्यादा यूज करने के बाद, तो एक घंटा फोन पे बात करने के बाद फोन गर्म हो गया, आपको लगा अरे बहुत गर्म हो गया, ठंडा करने के लिए पानी में डाल दिया. तो क्या आईफोन वाला आपको पूरा पैसा देगा या नया फोन देगा? वो बोलेगा, सर आपको हमने यूजर मैनुअल में क्लियर कहा है, इसको पानी से दूर रखना चाहिए, इसको अच्छे से संभालना चाहिए, इसको इतना ही चार्ज करना चाहिए. लेकिन अगर आप अपनी मूर्खता से वजह से कुछ करेंगे तो उसकी भरपाई वो लोग नहीं देंगे। तो इसके लिए यूजर मैनुअल पढ़ना बहुत जरूरी है। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण ने इस धरती के लोगों के लिए ये यूजर मैनुअल मतलब भगवद गीता बनाई है, और अगर हम नहीं पढ़ेंगे और हम अपने मन से कुछ कार्य करेंगे तो उसको भुगतान हमको ही करना पड़ेगा। तो शास्त्र जो है वो एक माता के समान है। जैसे माता को एग्जैक्टली मालूम है कि बेटे को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, उसको क्या अच्छा लगता है क्या अच्छा नहीं लगता, तो उसी प्रकार से शास्त्र हमेशा अपने पिता के बारे में बताते हैं। जैसे एक छोटे बालक को पता करना है कि उसके पिता कौन है, तो सबसे सरल मार्ग क्या है, अपनी माता को पूछे कि मेरे पिता कौन है। लेकिन बेटा बोलेगा अरे मैं तो साइंस का स्टूडेंट हूं, मैं क्यों ऐसे सब विश्वास नहीं करूंगा, मैं खुद डीएनए टेस्ट करूंगा, जितने भी प्रभु जी हैं यहां पर पूरे विश्व में सबका डीएनए टेस्ट करूंगा, और टेस्ट करने के बाद मेरा टेस्ट के साथ जो मैच होगा वो ही मेरे पिता है। तो ऐसे लाखों लाखों लोग तक टेस्ट करेगा, तब तक रिपोर्ट आने तक वो खुद चला जाएगा। तो इसके लिए शब्द प्रमाण यानी कि जो हम वास्तविक में गुरु शिष्य परंपरा के ज्ञान से सुनते हैं वो ज्ञान को बहुत ही मूल्यवान कहा गया है। तो इसके लिए माता यानी कि जो शास्त्र कहा गया है। तो यहां पर श्रीपाद शंकराचार्य गीता के बारे में कहते हैं, मलिने मोचनम पुमसाम जलस्नानम दिने दिने सकृत गीतामृत स्नानम संसार अमलनाशन। तो यहां पर भगवद गीता के गुणगान के लिए श्रीपाद शंकराचार्य कहते हैं कि जब हम गीता पढ़ते तो क्या होता है, जब हम गीता और भागवतम का अध्ययन करते हैं तो हमारे मन में जो मल है वो मल स्नान उसको साफ हो जाता है। जैसे हम स्नान करते तो शरीर स्नान हो जाता है। जैसे आप लोग खेती बाड़ी करके आए या कुछ अपने खेल कूद करके आए तो आपके शरीर में गंदगी लगी है, तो स्नान करने के बाद आप शुद्ध हो जाते हैं। उसी प्रकार से आपके मन को आपके हृदय को शुद्ध करने के लिए केवल सबसे आसान तरीका क्या है, गीता और भागवत का श्रवण करना। हाँ, इसके लिए तुकाराम महाराज कहते हैं, गीता भागवत करिते श्रवण अखंड चिंतन विथोबाच। तो यहां पर ये कहा गया है। और बड़े बड़े दिव्य लोग हैं, इन्होंने भी गीता पढ़ी और अपने जीवन में उसका परिवर्तन हुआ है। तो यहां पर हम गीता के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं कि गीता हमको क्या सिखाना चाहती है, गीता के सबसे ज्यादा फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या है जो हम जीवन में जान सकते हैं। सबसे पहला, गीता हमको अपनी पहचान बताती है। अगर कोई आपको पूछ रहे हैं कि भाई आप कौन हैं, आपकी क्या पहचान है, तो हम क्या बताएंगे। अगर आपको पूछते हैं सर आपका नाम क्या है, तो सुनील शर्मा जी अगर कोई आपको पूछे आपकी क्या पहचान है, क्या बोलेंगे आप, डरिए मत आराम से, गलत जवाब दिया तो कुछ दंड नहीं मिलेगा आपको। कोई पूछता है आपको कि सर आपकी क्या पहचान है, तो क्या बोलोगे, हाँ सर बोल रहे नहीं बोल पाएंगे, डर शर्मा गए सर, सुनील शर्मा जी सच में शर्मा गए। सर आपका नाम आनंद देवहरी जी, आपको अगर पूछते सर आपकी क्या पहचान है, क्या बोलेंगे आप, सर बोलेंगे उनका नाम। तो आनंद आपका नाम है, तो आनंद आपकी पहचान है क्या, आनंद आपका परमानेंट पहचान है, नहीं क्या, कल आपका नाम बदल सकता है, बदल सकता है। सर आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या, आपका नाम पवन बदल सकता है, नहीं आप नहीं बदलोगे लेकिन अगर बदलना चाहे तो बदल सकता है ना। तो नाम हमारी रियल पहचान नहीं है क्योंकि वो कभी भी बदल सकता है। किसी को लगता है मैं डॉक्टर हूं इंजीनियर हूं, कल उठ के वो भी बदल सकता है क्योंकि आप हो सके कोई दूसरा। कितने लोग हैं जो इंजीनियर होते हैं बाद में मार्केटिंग करते हैं, MBA करते हैं, या कुछ लोग इंजीनियरिंग करने के बाद डॉक्टरी करते हैं, ऐसा भी होता है। तो हमारी एक्चुअल पहचान क्या है, आजकल तो धर्म भी बदलते हैं, कोई मुस्लिम है वो हिंदू बन रहा है, हिंदू होते मुस्लिम बनता है, तो वास्तविक में हमारी एक्चुअल आइडेंटिटी क्या है? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति है उसको अपने बारे में मालूम ही नहीं, अपनी पहचान ही नहीं मालूम, तो उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? जो अपने आप को जानता नहीं उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? पागल। जो व्यक्ति अपने आप को ही नहीं जानता वो पागल। जैसे एक हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री एक बार एक पागल खाने में गए थे, तो पागल खाने में गए थे तो उनको उद्घाटन के लिए बुलाया था, कुछ वार्षिक कार्यक्रम के लिए बुलाया था, तो गए स्टेज पे, भाषण दिए, भाषण देने के बाद नीचे आए तो एक पागल आया, उसने उनकी टोपी उड़ा दी। तो टोपी उड़ा दी तो जो प्रधानमंत्री थे गुस्से में आ गए, बोले तुमको मालूम है मैं कौन हूं? तो आदमी ने बोला बता कौन है? तो बोला मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूं। तो पागल हंसने लगा, बोले जिस दिन मैं आया था तो मैं भी यही बोल रहा था। जब तीन चार शॉक लगेंगे तब समझ जाएगा कौन है तू। तो जब किसी व्यक्ति को अपने बारे में नहीं मालूम या अपने आप को कुछ दूसरा बताता है तो उस व्यक्ति को हम पागल बताते हैं। तो यहां पर गीता हमको बता रही है कि वास्तविक में अपनी पहचान क्या है वो जानो। भगवान कहते हैं कि हमारी वास्तविक पहचान क्या है, अगर कोई पूछते आप कौन हैं तो नाम वगैरह है, लेकिन वास्तविक हमारी पहचान क्या है, हम ये शरीर नहीं हम आत्मा है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि आधे से ज्यादा लोगों को ये मालूम नहीं है। अगर आपको मालूम होता तो आप ये शारीरिक स्तर पे नहीं होते। हमको आत्मा के स्तर पे जाना है। और आत्मा का स्तर क्या है? जब वो जानता है कि मेरे को वास्तविक में आत्मा को आनंद कब मिलेगा। इस दुनिया में हर कोई व्यक्ति है वो बिजी है, इस शरीर का कैसे ध्यान रखना है, अच्छे कपड़े पहनने हैं, लाखों करोड़ों रुपए के सोना चांदी पहनना है, अच्छे कपड़े पहनने, अच्छा हेयर स्टाइल करना है, हाँ अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छा घर चाहिए, सब कुछ हम शरीर के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन वास्तविक में आत्मा के लिए हम क्या कर रहे हैं? तो गीता कहती है कि वास्तविक में जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो आत्मा के स्तर पर जाता है। और आत्मा का स्तर क्या है? आत्मा को किस चीज में आनंद मिलेगा? बहुत बार ये आत्मा शब्द सुनकर लोग को भूत की याद आती है, तो घबराइए मत। हर व्यक्ति यहां पर जो बैठा है उसका वास्तविक गुण, उसका रूप, उसका वास्तविक जो बोलते हैं ना एटर्नल आइडेंटिटी है वो है आत्मा। हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, ठीक है? तो आत्मा को आनंद कैसे मिले कोई बता सकता है? बोलिए सर। जब हम परमात्मा की सेवा करें, जब हम परमात्मा की चर्चा करें, जब हम परमात्मा के संपर्क में आए, वो कार्य है जब आत्मा को आनंद मिले। जैसे आप यहां से वाड़ा आए हैं, यहां पर गोवर्धन इको विलेज में आए हैं बंबई से, तो बंबई से जब गाड़ी में आए कितने लोगों ने पेट्रोल भरवाया? कितने लोग भरवाएंगे या गैस भरवाएंगे? सोचो, गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया तो पेट्रोल डालना पड़ेगा, गैस डालना पड़ेगा या डीजल डालना पड़ेगा। सोचिए, आप चलते चलते आपको भूख लग गई, कितने लोग पेट्रोल पी लेंगे? क्योंकि आत्मा का खुराक अलग है, शरीर का खुराक अलग है, गाड़ी का खुराक अलग है। उसी प्रकार से शरीर को भूख लगी तो दाल राइस सब्जी जो भी है मिलेगा, लेकिन आत्मा को भूख लगी तो क्या खुलाना पड़ेगा? हरि नाम, हरि कथा, उससे आनंद मिलेगा। इसके लिए जब भी किसी की मृत्यु हो जाती है तो लोग क्या कहते हैं? डीजे क्यों नहीं लगाते या फिल्मी गाना क्यों नहीं लगाते? क्योंकि उनको मालूम है राम नाम लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आत्मा है उसका प्रूफ क्या है? कोई बोलेगा अरे प्रभु जी आप ये सब बोल रहे हैं, 21वीं सदी में कौन मानता है ये सब? तो आत्मा का प्रूफ क्या है? जब भी किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम क्या कहते हैं? कितना अच्छा आदमी था, छोड़ के चला गया। लेकिन कौन चला गया? वो तो बैठा है, लेटा है, कौन गया है? आत्मा। इसके लिए अगर मृत्यु की व्याख्या अगर कोई बोलता है, मृत्यु की व्याख्या क्या है? एब्सेंस ऑफ सोल इक्वल्स टू डेथ, मतलब जिस समय आपके शरीर से आत्मा चली गई मतलब मृत्यु हो गई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हमको याद रखना चाहिए। अगर आप जान चुके हैं कि वास्तविक में आत्मा स्तर पर हम हैं, तो आपको ये छोटी मोटी चीजों से कभी तकलीफ नहीं होगी। थोड़ा धूप बढ़ गया, गर्मी बढ़ गया, क्योंकि आपको मालूम है ये सब टेम्पररी है। और वास्तविक में हमारे जीवन में परमानेंट क्या है? जो हम भगवान का नाम लेते हैं, जो हम भगवान के भक्तों का संग लेते हैं, जो हम भगवान की सेवा करते हैं, वो परमानेंट है। तो इसके लिए नए साल में जितना हो सके हम भगवान की सेवा में तल्लीन होने चाहिए। भगवान के भक्तों का संग लीजिए और भगवान के नामों का स्मरण कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। दूसरा चीज जो भगवद गीता हमको सिखाती है वो है श्रद्धा, फेथ। आप में से कितने लोग आज गोवर्धन इको विलेज में पहली बार आए हैं? काफी लोग पहली बार आए हैं। तो आप लोग की क्या ऐसी प्रेरणा हो गई कि आप लोग आज संडे के दिन, वो भी न्यू ईयर के दिन यहां पर आ गए? कोई बताना चाहेगा? कोई बताना चाहेगा? जैसे आप लोगों ने किसी ने सुना होगा, अरे यहां पर मिनी वृंदावन है, यमुना है, गोवर्धन है, यहां यहां पर सुंदर मंदिर है, राइट? लेकिन आपने देखा नहीं, कैसे विश्वास कर लिया आप लोगों ने? जैसे इस दुनिया में लोग कहते कि जो दिखता है वही बिकता है। तो आपने देखा नहीं, पहली बार आए, लेकिन आपने विश्वास किया। 100 किलोमीटर दूर से आपने बस का भाड़ा देकर, गाड़ी का भाड़ा देकर आप यहां पर आए, मतलब किसी ना किसी व्यक्ति के ऊपर आपने विश्वास किया। तो ये जो श्रद्धा है ये सबसे जरूरी है और हर फील्ड में जरूरी है। हाँ, जैसे आप में से यहां पर प्रभु जी लोग बैठे हैं, यहां पर आप में से कितने लोगों ने कभी नाई के पास दाढ़ी बनाई है? कितने लोगों ने बनाई है? कितने लोगों ने आज ही बनाई है? हाँ? तो जब हम किसी नाई के पास जाते हैं, हाँ, किसी सलून में जाते हैं और उसको बोलते हैं भाई बना दे, तो आप ऐसे अच्छे से लेटे हैं, बैठे हैं, और वो व्यक्ति आता है और उसके हाथ में सबसे तेज धार वाला ब्लेड होता है और वो आपको अच्छे से साबुन लगाता है और लगाने ही वाला होता है, तभी आप में से कितने लोग उसको पूछते हैं, अरे भाई तेरे पास इस काम का डिग्री है क्या? कुछ कोर्स किया है क्या? कुछ सर्टिफिकेट है क्या? कितने लोग पूछते हैं? हाँ, कोई नहीं पूछते। सब लोग एक ही प्रश्न पूछते, कितना टाइम लगेगा, जल्दी बना दे भाई, जाने का है। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि वो दाढ़ी बनाते बनाते कभी इधर गर्दन पे पहुंचेगी और गलती से वो उसने खास दिया तो वो गर्दन कट सकती है। हाँ, गलती से गर्दन में थोड़ा कट लग गया तो, लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, ये तो अपना बाबू है, हर बार करता है, हर बार करता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो हम एक नाई के ऊपर विश्वास रख सकते हैं लेकिन भगवान के ऊपर नहीं। भगवान ने गीता में संदेश दिया है लेकिन हमको उस पर विश्वास नहीं है, लेकिन हम किसी भी दूसरे व्यक्ति पर विश्वास रख सकते हैं। हम बस ड्राइवर के ऊपर विश्वास रख सकते हैं कि भाई ये हमको सही सलामत पहुंचा देगा, लेकिन भगवान के ऊपर जब श्रद्धा की बात आती है तो हम बोलते हैं ऐसा थोड़ी होता है, किसने देखा है। तो ये श्रद्धा बहुत जरूरी है। उसी प्रकार से आप में से कितने लोग प्लेन में गए? तो जैसे आप प्लेन टिकट लेते हैं, बोर्डिंग पास लेते हैं, प्लेन में एंट्री करते हैं, जैसे अपने सीट पे बैठते हैं और दरवाजा बंद हो जाता है, दरवाजा बंद होने पहले कितने लोग कॉकपिट में यानी कि पायलट के पास जाके बोलते हैं, सर आता है ना, पहली बार है सर, पहुंचा देंगे ना, मतलब ऊपर नहीं नीचे। कोई पूछता है सर आपने कहां से कोर्स किया है, आपका सर्टिफिकेट डिग्री बताइए हमको। 99% को तो अंदर जाने को अलाउड ही नहीं है। वहां पर जो हवाई सुंदरी यानी कि एयर होस्टेस आपको बोलती है, सर वेलकम सर, प्लीज हैव योर सीट सर, और हंसते हंसते आपको बिठा देती है, यहां तक के बिठाने के बाद भी वो आपको चेतावनी देती है, देखो खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो आपके सीट के नीचे इमरजेंसी जैकेट है, कूद जाना, ऑक्सीजन की कमी है तो ऊपर से गिर जाएगा, ले लेना, कुछ हो गया तो हमको मत बोलना। ऐसा हुआ, ऐसा होता है, हर फ्लाइट में वो लोग बोलते ही है, और 99.99% लोग कान में म्यूजिक सुनते बोलते हैं अरे बोलने दो, दो घंटे में पहुंच जाएंगे, क्योंकि पूरा विश्वास है। लेकिन हम भगवान के ऊपर विश्वास नहीं रखते। इसके लिए श्रद्धा भक्ति का सबसे पहला अंग है, और श्रद्धा अगर हम करते हैं तो ही हम आगे जाएंगे दूसरे स्टेज पर, आदो श्रद्धा तथा भजन क्रिया। तो ये श्रद्धा बहुत जरूरी है, लेकिन अंधश्रद्धा नहीं रखनी चाहिए। हाँ, किसी ने कुछ भी बोल दिया मान लिया, नहीं, आपको प्रश्न पूछने चाहिए, आपको आपका जो कॉमन सेंस है वो यूज करना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत ही जरूरी है। जैसे यहां पर ये बच्चा है, इसको हवा में उछाला गया है लेकिन उसके चेहरे पर जरा भी भय नहीं है, क्यों? क्योंकि उसको मालूम है पिताजी है। ये चेहरे के, ये बेटे के चेहरे पर ऐसा लगता है पिताजी ने क्या छोड़ दिया तो, लेकिन उसके ऊपर श्रद्धा है। उसी प्रकार से हमको भी भगवान के ऊपर श्रद्धा रखनी चाहिए। कठिन से कठिन परिस्थिति आएगी लेकिन भगवान जब हमारे साथ है तो भगवान हमेशा रक्षा करते हैं। और गीता में कहते हैं जब जिसके पास श्रद्धा है तो ज्ञान भी आती है, अपना कर्तव्य कर पाएंगे और शांति भी प्राप्त होगी। भगवान गीता के 6वें अध्याय में कहता है सबसे बड़ा योगी कौन है, कौन है जो एक टांग पे खड़ा हो, एक हाथ पे खड़ा हो, जो सर पे खड़ा हो, शीर्षासन करे। भगवान कहता है सर से बड़ा योगी कौन है, योगी नाम अपि सर्वेशाम मद्गते नांतरात्मनः श्रद्धावान भजते यो माम शमे युक्ता तमोमतः। भगवान कहते हैं कि सबसे बड़ा योगी कौन है जो श्रद्धा से मेरा भजन करता है। जिस व्यक्ति को पूरी श्रद्धा है, पूरी निष्ठा है, वो मेरा सबसे बड़ा भक्त है, सबसे बड़ा योगी है। तो ये भगवान कह रहे हैं। फिर तीसरी चीज जो हमारे लिए भगवान कहते हैं सबसे जरूरी है, वो है मन के ऊपर काबू करना, माइंड कंट्रोल। आप में से कितने लोग का मन आपके नियंत्रण में है? यहां पर एक ही शुद्ध भक्त है। कितने लोग को लगता है आपके मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है? मैं तो दोनों हाथ उठाऊंगा। अगर किसको लगता है कि अरे यार मेरा मन जो है पूरे काबू में है, तो आपको मैं उदाहरण देता हूं। आप में से कितने लोग सुबह अलार्म लगाते हैं और उठते भी है? मान लीजिए आज रात को आप थक गए, यहां से पहुंचते पहुंचते लेट हो गया, और आप रात को 10, 11, 12 बज गए सोते सोते, और 12 बजे सो रहे हैं, लेकिन आपने सोचा सुबह मेरे को 6 बजे उठना है क्योंकि ऑफिस जाना है आपको कल, तो 6 बजे का आपने अलार्म लगाया और सो गए, और जैसे अलार्म की घंटी बजी सबसे पहला आपके मन में क्या विचार आता है? सबसे पहला विचार क्या आता है? हाँ, वॉशरूम। अरे वो तो उठने के बाद, 5 मिनट बाद के पहले सबसे पहला विचार आता है अरे साला इतना जल्दी कैसे बच गया, अभी अभी तो सोया था। फिर बाद में विचार आ जाता है क्या, 5 मिनट और। फिर जिस व्यक्ति ने वो स्नूज बटन बनाया उसका धन्यवाद करते करते उस स्नूज बटन को दबा के 5 मिनट सो जाता। फिर जैसे 5 मिनट का स्नूज बटन दबाया फिर वापस बचता है, फिर बंद करके 6 बजे उठने वाला व्यक्ति 7 बजे उठ जाता है। अभी 7 बजे उठता है और 7:30 को उसको ऑफिस में पहुंचना है, तो अभी वो भाग रहा है, जल्दी जल्दी स्नान किया, ब्रेकफास्ट भी नहीं खाया, गाड़ी पकड़ कर, रिक्शा पकड़ के अभी वो ऑफिस जा रहा है। अभी ऑफिस पहुंचने को उसको और 15 मिनट है, ऑलरेडी 7:30 बज गए, लेट हो गया है। अभी मन में वो क्या सोच रहा है, 6 बजे का अलार्म लगाया था, वो स्नूज का बटन दबाया क्यों? अभी वो जो मन है जिसने आपको बोला सो जा 5 मिनट, वही मन आपको क्या बोल रहा है? 6 बजे का अलार्म लगाया था, कौन बोला था वो बनाने को? मतलब आप देख रहे हैं यहां पर मन जो है वो आपको क्या कर रहा है, पहले तो आपको बोल रहा है सो जाओ, फिर बोल रहा है सोए क्यों, मतलब आपको दोनों दिशा में भगा रहा है। इसका मतलब है मन बड़ा चंचल है। तो इसके लिए भगवान गीता में अर्जुन कृष्ण को कहते हैं कि चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथ ही बलभद्रम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुर इव स दुष्करम। भगवान को कह रहे हैं कि भाई मेरा जो मन है वो चंचल है, एक जगह पे बैठता ही नहीं, उसके बाद क्या है बलवद मतलब पागल है। जैसे एक पागल व्यक्ति को कंट्रोल करना कितना मुश्किल है, उसके बाद क्या है बलवद। सोचो चंचल है, पागल है और बलवान भी है, सोचो ऐसे 3 व्यक्ति को कंट्रोल करना कितना मुश्किल है। और फिर दृढ़ मतलब जिद्दी भी है। सोचो एक व्यक्ति जिसमें ये चारों कॉम्बिनेशन है और पागल भी है, ऐसे व्यक्ति को हम संभालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो ये मन मेरा ऐसा है, क्या करूं, मेरे से तो कुछ नहीं होगा, मैं तो मन को नियंत्रण में नहीं ला सकता। हां वायु को कंट्रोल कर सकता हूं। सोचो अर्जुन का पावर क्या था, आप में से कोई है जो वायु को काबू में कर सकता है? अगर है तो बोल दो, अगली बार तूफान आएगा तो आपको बोल देंगे। हाँ तो ये शक्ति थी अर्जुन की, केवल एक बाण से वो वायु को कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन बोल रहे मैं मेरे मन को नहीं कंट्रोल कर सकता। तो भगवान कहते कि हाँ अर्जुन ये कठिन है, लेकिन 2 चीज से हम मन को विजय प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्या है, अभ्यास है न तू कौन थे, अभ्यास मतलब रेगुलर प्रैक्टिस। जब हम रेगुलर चीज कोई करते हैं तो हम रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं। आप ऐसे कितने लोगों ने सर्कस में देखा है वो लोग रस्सी के ऊपर चलते हैं, आप में से और हम में से कोई कर पाएगा? लेकिन क्योंकि वो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं वो चल पाते हैं। उसी प्रकार से मन को हम काबू करने का क्या है, हमेशा उसको अलग अलग जगह भागेगा, उसको वापस लेके आना। जैसे छोटा बच्चा यहां पे बैठेगा, बोलेगा मुझको वो दो, मुझको ये दो, मुझको ये लाके दो, मम्मी क्या बोलते हैं, नहीं नहीं अभी इधर बैठो, खाना दो, नहीं नहीं अभी नहीं बाद में। तो पहला है प्रैक्टिस, दूसरा है डिटैचमेंट। तो बहुत बार कुछ कुछ चीज हमारे पास आएगी लेकिन हम क्या करेंगे, नहीं नहीं अभी नहीं बाद में। जैसे बच्चे का एग्जाम है तो, लेकिन मन तो बहुत होगा खेलने का, लेकिन वो मन मम्मी क्या बोलेगी, बेटा अभी नहीं एग्जाम होने के बाद। तो बेटा अगर वो उस समय पढ़ाई करता है उसको मालूम है अच्छे से मार्क आएंगे तो आगे अच्छा है। तो ये हमको जानना चाहिए। तो यहाँ पर ये माइंड कंट्रोल के ऊपर बताया गया है, और यहाँ पर भगवान ने कहा है प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट, अभ्यास और वैराग्य। फिर तीसरा या चौथा जो चीज भगवान यहाँ पर हमको बता रहे हैं वो है टॉलरेंस, सहिष्णुता। तो इस दुनिया में आजकल टॉलरेंस बहुत कम हो चुका है। आजकल छोटी छोटी चीजों के ऊपर लोग लड़ने लगते हैं। इसका ज्वलंत उदाहरण क्या है, हमारी बंबई की लोकल ट्रेन। कितने लोग गए हैं ट्रेन में? ट्रेन की ये नित्य लीला है। एक तो ट्रेन में चढ़ना ही बड़ी बात है, और बड़ी मुश्किल से चढ़ गए धक्का मुक्की करके। मैं बोलता हूँ ट्रेन में आपको फ्री मसाज मिल जाता है, धक्का मार मार के आपको जाते हैं। मैं एक बार ट्रेन में बैठा था, वहाँ पर बहुत भीड़ थी, तो आपको मालूम है जब भीड़ रहती है तो लोग बैठ जाते हैं, फिर 2 सीट के बीच में भी जगह है वहाँ बैठ जाते हैं। तो कुछ समय के बाद 1-2 स्टेशन आ गए तो वो विंडो सीट वाला आदमी उठ गया, तो जो वहाँ पर खड़ा था बड़ी चाव लगा के खड़ा था कि ये सीट मेरे को मिल जाएगी, लेकिन जैसे वो आदमी उठा तो दूसरा वाला चिपक गया इस तरफ, तो विंडो सीट चली गई। तो वो आदमी जो खड़ा था बड़ा गुस्सा हो गया, बोला क्या पागल हो क्या, इतना समय से खड़ा हो यहाँ पर? तो उस व्यक्ति ने बोला क्या तू पागल है तो पागल है, मैं क्या करूँ। तो बाद में दोनों का झगड़ा हो गया, दोनों झगड़े में अपनी माँ बहन चाचा चाची सबको याद करने लगे। उसके बाद मेरे को मालूम नहीं ये ट्रेन में क्यों बोलते, उसने बोला तू क्या ट्रेन में पहली बार आया है क्या, मतलब जैसे बहुत गर्व की बात है। लोग बोलते ना अरे नहीं, फिर दूसरे ने बोला पहली बार नहीं, 20 साल से इसी ट्रेन में आ रहा हूं, जैसे उसको कोई परमवीर चक्र मिला हो। तो फिर दोनों का झगड़ा हुआ, झगड़ा करते करते हाथापाई हुई, फिर लोगों ने बोला अरे इधर झगड़ा मत करो, उतरना है उतर के देखो। फिर दोनों का क्या बोलते ईगो, मतलब अहंकार इतना बढ़ गया, बोले तू नीचे उतर मैं दिखाता हूं। तो वो बोलता है तू नीचे उतर मैं दिखाता हूं, और दोनों एक दूसरे को बोल रहे। फिर लोगों ने बोला अरे दोनों उतरो यार हमको छेड़ दो। फिर दोनों ने उनको उतार दिया। अभी वो लोग ट्रेन पे स्टेशन पे उतर के वहां पे मारपीट कर रहे हैं। अभी प्रश्न ये है कि किसके लिए मारपीट कर रहे हैं? उस सीट के लिए जो ट्रेन के साथ चली गई। अभी जाना था किसी को अंधेरी या बांद्रा, लेकिन जाएंगे अस्पताल या पुलिस स्टेशन। तो सोचिए छोटी छोटी बातों के लिए अगर हम टॉलरेट नहीं कर पाएंगे कितनी बड़ी समस्या हो जाती। सोचो किसी को ज्यादा लग गया, अस्पताल में चला गया, हाथ पैर टूट गया, तो हमारे गिरिराज प्रभु के पास जाना पड़ेगा, उनके पास ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो सोचिए कितनी कितनी बड़ी समस्या हो सकती है। लेकिन उसी समय हम बोलेंगे चलो यार 5 मिनट में तो मेरा स्टेशन आने वाला है, ठीक है आप बैठ जाइए, अच्छा है। तो वो आदमी भी खुश हो जाएगा, आपको भी समझ जाएगा कि छोटी छोटी बात पे ये करके कुछ फायदा है। उसी प्रकार से जीवन में भी हमको ये टॉलरेंस बहुत जरूरी है। हाँ, ये सहिष्णुता, ये पेशेंस बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या हो जाता है, नहीं तो हम छोटी छोटी चीज को पकड़ के बैठ जाते और उससे हमको ही तकलीफ हो जाती है। जैसे किसी सगे वालों ने आपको शादी में नहीं बुलाया, अभी शादी होके उसके बच्चे भी हो गए, लेकिन आपके मन में बात बैठी है इसने शादी में नहीं बुलाया, याद रखा जाएगा। तो छोड़ देना चाहिए। जैसे अभी पूरा साल गया है, 31 दिसंबर को आपको सोचना चाहिए कि मैंने किसी का बुरा किया तो माफ कर दो, अगर किसी ने आपका बुरा किया तो माफ कर दो, छोड़ दो, नया जिंदगी जियो, नए साल की नई शुरुआत करो, अच्छा करो, क्योंकि जब मृत्यु आती है तो सब छोड़ के ही जाना है ना, क्या लेके जाने वाले। तो इसके लिए ये टॉलरेंस है। और टॉलरेंस का सबसे बेस्ट उपाय क्या है? जब भी हमारे जीवन में ऐसी कठिन परिस्थिति आएगी तो हमको उस परिस्थिति को सामना करना चाहिए। तो सामना करने का दो प्रयास है, दो उपाय है। पहला उपाय क्या है? रिएक्ट। और दूसरा उपाय है रिस्पॉन्ड। रिएक्ट मतलब क्या? जैसे किसी ने आपको कुछ बोल दिया, आपको अच्छा नहीं लगा, तो ये रिएक्ट, तुरंत आप उसके ऊपर गुस्सा से बात करोगे या उसको मारने जाओगे, ये रिएक्शन हो जाता है। लेकिन दूसरी परिस्थिति है, आप सोचो क्या इस परिस्थिति में मेरा कुछ फायदा होगा, या इस परिस्थिति से सिचुएशन बदल सकती है। जैसे एक छोटे बच्चे ने कांच का ग्लास गिरा दिया, तो पहला रिएक्शन क्या है? दे पड़ा, समझता नहीं, इधर को फोड़ दिया। हाँ, ये पहला रिएक्शन, क्योंकि हम गुस्सा हो जाते, तुरंत हो जाते कि इसने बच्चे ने नुकसान कर दिया, ये पहला रिएक्शन है। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो रिएक्ट नहीं करेगा, वो क्या बोलेगा? टूट गया ना, पहले देखेगा बच्चे को लगा तो नहीं, फिर सोचेगा ठीक है ना ग्लास ही तो टूटा है, दूसरा नया आ जाएगा। फिर बच्चे को बोला देखो ध्यान रखना, अब की बार ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये इस पता है रिस्पॉन्ड। जैसे आप लोग ने अगर स्प्राइट की बोतल पी हो, तो जैसे हम खोलते तो क्या होता है? बाहर आ जाता है। तो ये हो गया रिएक्शन। जो आदमी हमेशा गुस्से में होता है, किसी का गुस्सा दूसरे पे निकाल देता है वो, और लोकल ट्रेन में यही होता है, घर पे झगड़ा हो गया गुस्सा ट्रेन में निकाल देते हैं वो लोग। तो ये होता है रिएक्शन। रिस्पॉन्ड होता है एक वाटर बॉटल की जगह, उसको कितना भी हिलाओ खोलने में कुछ नहीं, रिएक्शन होगा। तो ये टॉलरेंस बहुत जरूरी है। और भगवान गीता में यही कहते हैं, मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा अगामा पाइनो नित्यस ताम तितिक्षस्व भारत। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति वास्तविक में बुद्धिमान है, वो धूप छाव गर्मी ठंडी इस परिस्थिति में अपना दिमाग खो नहीं लेता, उस परिस्थिति को वो टॉलरेट करता है। और जो व्यक्ति टॉलरेट करता है वो क्या है? हाँ, मात्र स्पर्शस्तु कौन्ते है शीतोष्ण सुख दुख दह अगामा अपाइनो नितिश्य ताम तितिक्षस्व भारत। वो बड़ा पावरफुल व्यक्ति होता है। और हम शिवाजी महाराज की परिस्थिति में देखते हैं कि एक बार शिवाजी महाराज अपने लोगों के साथ गए थे, तो जब वो गए तो वहां पर बहुत सारे लोग थे और गलती से एक औरत थी जो आम तोड़ रही थी, तो उसने आम के लिए पत्थर फेंका और वो पत्थर शिवाजी महाराज के सर पे लग गया, खून बहने लगा और उनके जो सैनिक है उन्होंने चाकू निकाला, हर हर महादेव अभी उसको काटने वाले थे, तो तभी शिवाजी ने कहा कि नहीं 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 नहीं, गलती से हुआ है, छोड़ दो। फिर शिवाजी महाराज ने कहा कि ये आप भव्य पेड़ देख रहे हैं, तो बोले क्या सीख मिलती है इस पेड़ को देखकर? तो लोगों ने कहा अरे इतने अच्छे आम के फल है तो किसने अच्छा देखो कितना पेल है, कितना छाव दे रहा है, किसने कहा कितनी अच्छी अच्छी वृक्ष है, कितने डाढ़ी है, कितने फल है, कितने फूल है, तो हमारा जो पेड़ है हमको केवल दे रहा है, ऑक्सीजन देता है, लकड़ा देता है, फूल देता है, पत्ते देता है, जड़ी बूटियां देता है, क्या क्या नहीं देता। तो इसके लिए मैं हमेशा कहता हूं पेड़ जो है वो है देना बैंक, हम है लेना बैंक, हम केवल लेते हैं और वातावरण को प्रदूषित करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सीख जो पेड़ हमको सिखाता है वो है टॉलरेंस। आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, कोई भी परिस्थिति में वो पेड़ खड़ा रहता है वहां पर। तो जो वास्तविक में जो स्थिर व्यक्ति है हर परिस्थिति में वो खड़ा रहता है, उस क्योंकि उसकी जड़ें मजबूत होती है। और उसकी जड़ें कब मजबूत होगी? जब आपके वस्त आपके जीवन में दिव्य ज्ञान हो तब। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। फिर गीता और हमको क्या सिखाती है? बैलेंस लाइफ, अपने जीवन को कैसे संतुलन करना चाहिए, अपने जीवन को किस प्रकार से संतुलित करना चाहिए, ये गीता सिखाती है। आजकल बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न होता है कि वास्तविक में अपने जीवन को संतुलित कैसे करें। कुछ लोग सुबह जल्दी उठ पाते हैं, कुछ लोग सुबह नहीं उठ पाते हैं, कुछ लोग पढ़ाई में ज्यादा अच्छे हैं तो खेल कूद में अच्छे नहीं है, कुछ लोग खेल कूद ज्यादा कर लेते हैं पढ़ाई अच्छे नहीं करते, कुछ लोग काम ज्यादा करते हैं लेकिन अपने परिवार के साथ समय नहीं बिताते, कुछ लोग परिवार के साथ इतना समय बिता देते हैं कि काम नहीं कर पाते। तो इसके लिए गीता कहता है कि हमको जीवन में एक संतुलन लाने की जरूरत है। इसके लिए गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसुः युक्त सपनावबोधस्य योगो भवति सुखः। तो जो व्यक्ति वास्तविक में सुख चाहिए, जो व्यक्ति को वास्तविक में दुख से दूर होना चाहिए, उस व्यक्ति को सब चीज को एक बैलेंस में करना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर क्या बोलेगा? यू शुड हैव अ बैलेंस्ड डाइट, सब कुछ होना चाहिए उसमें। हाँ, उसी प्रकार से अपने जीवन को बैलेंस करने के लिए बेसिक चीजों को तो पहले बैलेंस करो। वो क्या है? आहार, युक्ताहार विहार, वर्क एंड रिक्रिएशन, और खाने में ज्यादा मत खाओ और ज्यादा कम भी मत खाओ, ज्यादा मत सो और कम भी मत सो। अंग्रेजी में कहावत है इफ यू स्लीप टू मच यू बिकम लेजी, इफ यू स्लीप टू मच यू बिकम लेजी एंड इफ यू स्लीप टू लेस यू बिकम क्रेजी। मतलब जो कम सोते हैं ना बड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं, इसके लिए नींद भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये बैलेंस बहुत जरूरी है, तो ये इंपॉर्टेंस है हमारे जीवन में। और जब ये बैलेंस रखेंगे हमारे जीवन में तो वास्तविक में आप सत्व गुण में आएंगे और सत्व गुण में आप नेचुरली सुखी रहेंगे, शांत रहेंगे और आनंदित रहेंगे। फिर गीता कहता है शांति के बारे में। कितने लोगों को शांति चाहिए? हर व्यक्ति चाहता है कि भाई हमको शांति चाहिए। तो वास्तविक शांति कैसे प्राप्त हो? केवल शांत बैठने से शांति मिलेगी? तो गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति मेरे संपर्क में है, जो व्यक्ति जानता है कि सब कुछ जिस इस दुनिया में जो भी कुछ है वो मेरे आनंद के लिए है, वो व्यक्ति हमेशा सुखमय शांतिमय जीवन में रह सकता है। भगवान गीता के 5वें अध्याय के आखिरी श्लोक में कहते हैं भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूरदा सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। भगवान कहते हैं कि वास्तव में आपको शांति चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? आपको जानना पड़ेगा कि इस दुनिया में सबसे बड़ा भोक्ता राम कौन है, वो है भगवान। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, इस दुनिया के सभी लोकों के महेश्वर कौन है, भगवान कृष्ण। और जब हम ये जानते हैं तो हम सुखी रहेंगे, हम शांत रहेंगे। जिस प्रकार से यहाँ पे बल्ब है, कितना भी महंगा बल्ब हो, कितना भी बड़ा शैंडलियर हो, जब तक वो लाइट से कनेक्टेड नहीं है उसका कुछ फायदा नहीं। उसी प्रकार से आपके घर में भले सोने का नहीं चांदी का नल हो लेकिन पानी का कनेक्शन ना हो तो क्या फायदा। उसी प्रकार से जब तक हम भगवान के संपर्क में नहीं है और भगवान के संपर्क में रहकर भगवान के भक्तों के संग में भगवान की सेवा ना करें, तब तक वो जीवन में एक अधूरापन रह जाएगा। जिस प्रकार से एक मछली है, एक मछली को पानी से निकालकर आप उसको आईफोन 14 दे दोगे, क्या वो खुश हो जाएगी? क्या उसको अच्छे से अच्छा बंगलो दे दोगे, क्या वो खुश हो जाएगी? उसको वापस पानी में डालोगे तभी वो खुश हो जाएगी। तो यही एक आत्मा का स्वभाव है, जब भी वो भगवान के संपर्क में आएगी तभी उसके जीवन में उद्धार होगा। और ये भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अहंकार से मुक्त होता है और इस प्रकार से अपने जीवन को आगे बढ़ाता है वही व्यक्ति आगे जा सकता है। ठीक है, तो अगर वास्तविक में आपको सुख शांति चाहिए तो आज हमने जो गीता के आधार पर चर्चा की उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए, तभी आपके जीवन में सुख एवं शांति की प्राप्ति होगी। और नए साल में सभी को सुख शांति की बधाई हम देते हैं, लेकिन वो बधाई देने के लिए हमको क्या कुछ करना पड़ेगा? जैसे आजकल लोग बोलते हैं कि ये काम करो 10 दिन में करोड़पति बन जाओगे, लेकिन कितने लोग करोड़पति बनते हैं? हाँ, बहुत कम, क्योंकि इतने लोग प्रयास कम करते हैं। लोग बोलते हैं कि 10 मिनट रोज एक्सरसाइज करो, 1 महीने में 10 किलो कम हो जाएगा, कितने लोगों का कम होता है? बहुत कम, क्योंकि सुनना अच्छा लगता है 10 किलो कम हो जाएगा, लेकिन करने में थोड़ा परिश्रम है। उसी प्रकार से आज ने हम गीता के आधार पर हमने नए साल के लिए कुछ हमने ऐसे चीज़ें बताई, अगर उसको हमारे जीवन में उतारेंगे तो हमारे जीवन में बहुत फायदा होगा। और कृपा करके आप सभी से विनती है कि नए साल में हमारे इस्कॉन मंदिर से जुड़िए, प्रभुपाद जी की किताब से जुड़िए। अगर आपके पास गीता पढ़ने का समय नहीं तो गीता के ऊपर प्रवचन सुनिए। यूट्यूब पे एक कोर्स है इंग्लिश में, जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, ये 6 सेशन कोर्स है, अगर आपको समय है तो वो सुनिए। हिंदी में उसको कहते हैं आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, वो 6 सेशन कोर्स सुनिए। आप चलते फिरते गाड़ी में सुन सकते हैं और अपने जीवन को जानने का प्रयास कीजिए। तो अंत में मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने अपने कीमती समय में यहाँ पर गोवर्धनी को विलेज में आए और आप यहाँ पर भगवान के दर्शन के लिए आए। यहाँ पर सुंदर वृंदावन फॉरेस्ट की प्रतिकृति निर्माण की है, आप दर्शन लीजिए और भगवान कृष्ण को अपने जीवन में जोड़िए। तो पुनः एक बार पुनः साल नए साल की शुभकामनाएं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान।